फैज हॉस्पिटल में था। छवि उससे मिलने आई थी। उसने काफी देर तक फैज से बात की, जिसे उसने आंखों के इशारों से जवाब दिया। अयान ने छवि को वहां देख लिया था, इसलिए वो वहां पर आया और उस पर गुस्सा करने लगा। अयान के जाने के बाद फैज ने छवि को भी वहां से निकाल दिया। छवि के जाने के बाद फैज आयु के बारे में सोच रहा था। अयान के बर्ताव से उसे साफ हो गया था कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आयु और आरफ के बीच दूरियां आ गई हैं। फैज बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग सही से काम कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, हमें कुछ भी करके आरफ खुराना को हमारे बीच से हटाना होगा। हम अच्छे से जानते हैं उसे, वो तो उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं आने दे रहा होगा। हमें उन्हें देखना है। अगर वो हमारी आंखों के सामने रही तो हमें यकीन है कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। इतना ऑब्सेशन तो हमें किसी के लिए नहीं हुआ जितना आपके लिए हो रहा है। आप उस आरफ खुराना के साथ नहीं हो सकती। आपको हमारे पास होना चाहिए। हम आपको शहजादियों की तरह रखेंगे, हमारी शहजादी। फैज मन ही मन प्लान करने लगा कि कैसे आयु और आरफ को दूर किया जा सकता है। दूसरी तरफ आयु अपने कपड़े लेकर पास के रूम में गई। उसे आरफ को हॉस्पिटल जाने के लिए मनाना था, इसलिए वो आरफ के साथ ही तैयार होने लगी। आयु रेडी होकर रूम में आई तो उसने देखा आरफ भी बाथरूम से बाहर आ गया था। आयु को तैयार हुआ देखकर आरफ ने कहा, हमारी फ्लाइट शाम को है, तुम इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गई? आयु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है आरफ। देखो, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वहां जाकर मुझे अयान से लीव के लिए भी बात करनी होगी, मिस्टर कपूर से परमिशन लेनी होगी, साथ ही आगे के शेड्यूल भी सेट करने होंगे। बहुत सारा काम है, ये मैं यहाँ घर बैठी नहीं कर सकती। इस बार वो आरफ से बहस करने के बजाय उसे प्यार से समझा रही थी। आरफ बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, फिर उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आयु को अपने पास खींचते हुए कहा, ठीक है, चली जाना, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना होगा। कल रात के बाद तुमसे एक मिनट भी दूर रहना मुश्किल सा हो रहा है। आयु आरफ को कुछ कहती उससे पहले उसने अपने होंठ आयु के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। आयु को हैरानी हो रही थी कि आरफ बिना बहस करे इतनी जल्दी मान कैसे गया, जबकि वो तो आरफ को मनाने के लिए अच्छी खासी स्क्रिप्ट तैयार करके लेकर आई थी। आरफ मान गया था तो आयु को कुछ कहना नहीं पड़ा, वो बस उसका साथ दे रही थी। किस करते हुए आरफ ने आयु को बेड पर पुश किया और खुद उसके ऊपर आ गया। आरफ, प्लीज अभी नहीं, आयु आरफ को मना करना चाह रही थी। उसे हॉस्पिटल भी जाना था और वो इतनी जल्दी इसके लिए तैयार भी नहीं थी। आरफ ने आयु के पास आकर मधोश आवाज में कहा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, जानता हूं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जल्दी लगी है। आयु ने फिर आगे जिद नहीं की, उसने हाँ में पलकें झपका दी। हालांकि वो इतनी जल्दी इस मोमेंट के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी आरफ ने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए हाँ कह दी थी, तो वो भी ना कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कुछ ही देर में उनके कपड़े फ्लोर पर बिखरे थे और दोनों एक दूसरे के दुनिया में खोए हुए थे। लगभग 10 बजे के करीब आरफ ने आयु को छोड़ा। उसने आयु को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, सच बताऊं तो मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने करीब आ भी पाएंगे। ऐसा क्यों? तुम तो पहले से ही मुझे पसंद करने लगे थे, और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम अपनी डिजायर्स को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आयु ने हैरानी से पूछा। आरफ ने आयु की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं माहिरा के साथ एक डील में बंधा हुआ था, तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन उस डील के चक्कर में मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आ पाता। फिर मैंने सोचा कि मैं आरफ खुराना हूँ, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगा जो मुझे करना होगा। जैसे तैसे अपने मन को मनाकर तुम्हारे करीब आने का सोचा, और शादी हुई तो कुछ और ही सच्चाई पता चली। सब ठीक होने को आया तो हमारे बीच के ही झगड़े नहीं ठीक हो रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि हम इतने करीब आ पाएंगे। यही सोचा था कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते हम हमेशा एक दूसरे के पास आते आते दूर हो जाएंगे। आरफ के दिल में जो भी था वो उसने आयु को बता दिया। आयु ने भी उसकी बात पर सहमति जताई, क्योंकि सच यही था। कहीं ना कहीं उसे भी यही महसूस होता था कि उसके और आरफ के बीच प्रॉब्लम्स आसानी से सही नहीं होने वाली। सारी बात सुनने के बाद आयु ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा बहस होती रहेगी, लेकिन हम प्यार से इन्हें सुलझा लेंगे। अपनी बात खत्म करके आयु ने आरफ के हाथ को पकड़कर उस पर किस किया। आरफ ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर आरफ ने घड़ी में टाइम देखा तो 10:30 होने को आए थे। आरफ बेड से खड़ा हुआ और अपने कपड़े पहनने लगा। जबकि आयु ने खड़े होने की कोशिश की तो उसकी बॉडी में भयंकर पेन हो रहा था। आरफ, मुझे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा है, आयु ने थकान भरे स्वर में कहा। फिर उसने आरफ के फेस की तरफ देखा तो उस पर ईविल स्माइल थी। आरफ आयु के पास आया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, कोई बात नहीं मिसेस खुराना, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, तुम्हें इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। तुमने बताया था ना कि तुम्हारी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। खाना खाओगी और थोड़ी देर आराम करोगी तो ठीक लगने लगेगा। आरव की बातें सुनकर आयू को समझते देर नहीं लगी कि वो इतनी जल्दी आयू के करीब क्यों आया होगा। आयू ने गुस्से में आरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सब पता था और तुमने जानबूझकर किया ये। तुम मुझे हॉस्पिटल जाने से रोकना चाहते थे। तुम बहुत बुरे हो आरव खुराना। तुम मेरी बात सीधे तरीके से मान नहीं रही थी तो मैंने अपना तरीका अपना लिया, आरव ने कंधे उचका कर कहा। देखो, कई बार कुछ चीजें प्यार से हैंडल करनी पड़ती हैं। थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन आखिर में प्यार से एक दूसरे को समझकर सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। सी, मैंने कितने ज्यादा प्यार से तुम्हें हैंडल किया। आरव ने अपने कपड़े पहन लिए थे। उसने आयू के कपड़े जमीन से उठाए और उसे देने के लिए उसके पास आया तो आयू ने उसकी तरफ पिलो भेंक कर मारा। तुम ना अब मेरे आसपास भी मत आना। पता नहीं किस मकसद से क्या करते हो, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता है। मुझे ना इस वक्त तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारा गला दबा दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम प्लीज बाहर चले जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, आयू ने चिल्लाकर कहा। उसे सच में इस वक्त आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एज योर विश, दादी को बोलकर खाना भिजवा देता हूँ, खा लेना और रेस्ट कर लेना। शाम को हमारी फ्लाइट है, दादी आएगी तो कपड़े पहन लेना। अब उनके सामने अच्छा थोड़ी ना लगेगा जो तुम ब्लैंकेट में खुद को लपेट कर बैठी रहोगी, आरव ने आई विंग करके कहा और फिर वहां से चला गया। आरव के जाने के बाद भी आयू गुस्से में गहरी सांसें ले रही थी। उसने खुद से बड़बड़ा कर कहा, इसे अच्छे से पता है कि मैं किस हद तक क्या सहन कर सकती हूँ। जरूर आयान ने ही इसे मेरी रिपोर्ट दिखाई होगी, इतना बुरा है ये, मेरी मेडिकल कंडीशन का फायदा उठा रहा है। आयू ने अपने कपड़े पहने और गुस्से में वहीं पर लेट गई। वहीं आरव नीचे गौरवी जी के पास गया। कबीर पहले ही ऑफिस जा चुका था, इसलिए आरव और गौरवी जी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
आयू सुबह भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई थी तो गौरवी जी ने आरव से पूछा, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? वो रात को भी नहीं आई थी, तुम्हें उसे लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। और तुम आज इतने लेट कैसे उठे? तुम्हें तो जल्दी उठने की आदत है ना? कुछ नहीं हुआ दादी, सब ठीक है, वो कोई बीमार नहीं है, बस थोड़ी थकी हुई है। आगे मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन मत मांगिए, मुझसे नहीं बताया जाएगा, आरव ने खाते हुए कहा। गौरवी जी उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, फिर अचानक उनकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरे पर खुशी के भाव थे। उन्होंने आरव के हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या सच में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आयू प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है, और तुम हो कि उसे रूम में अकेले छोड़कर आ जाते हो। गौरवी जी आरव की बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रही थीं। इससे पहले कि वो उठकर जाती, आरव ने उनका हाथ पकड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, अभी ऐसा कुछ नहीं है दादी, और आप उसके सामने ये सब बोल भी मत देना, वरना वो मेरी जान ले लेगी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आयू की बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी अलग है, थोड़े काम में ही वो थक जाती हैं, तो सोचो कि अगर उसने ज्यादा कुछ किया हो तो ज्यादा थकेगी। और हाँ ठीक है, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, गौरवी जी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। आरव ने अब तक गौरवी जी को उनके दुबई जाने के प्लान के बारे में बताया नहीं था। शाम को उसकी फ्लाइट थी, इसलिए उसके बारे में बताते हुए आरव ने कहा, दादी मैं और आयु 2 दिन के हनीमून के लिए जा रहे हैं, शाम को हमारी दुबई के लिए फ्लाइट है। 2 दिन के हनीमून के लिए कौन जाता है, ऊपर से दुबई? तुम हनीमून पर जा रहे हो या अपनी एक्स से मिलने? गौरवी जी ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। वो भी जानती थी कि आरव अक्सर दुबई जाता रहता था, और उसका एक ही कारण था, माहिरा लूथरा। माही दुबई में नहीं है और मैं उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ, मेरी वहाँ कोई मीटिंग है, 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा, अकेले जाने में बोर हो जाऊँगा तो सोचा आयु को भी साथ ले चलूँ। चलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप आयु के लिए ब्रेकफास्ट भिजवा देना, आरव ने उठते हुए कहा। उसका ब्रेकफास्ट भी हो गया था। जाने से पहले उसने गौरवी जी को हक करके उन्हें लव यू बोला और फिर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। आरव के जाने के बाद भी गौरवी जी के चेहरे पर स्माइल थी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, इतने सालों में पहली बार इसकी आंखों में वही चमक देखी है जो बचपन में हुआ करती थी। थैंक यू सो मच आयू, मेरे आरू की जिंदगी में इतनी खुशियां लाने के लिए। वो हमेशा से ही किसी के प्यार के लिए तरसा है, और तुम्हारे आते ही उसकी जिंदगी का खालीपन दूर हो गया है। उसके बाद गौरवी जी वापस अंदर आ गईं और आयू के लिए खाना डालने लगीं। आयू और आरव को साथ खुश देखकर उन्हें भी सुकून महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरव गाड़ी में था, वो खुराना इंडस्ट्रीज जाने से पहले हॉस्पिटल जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने गाड़ी पार्क की और अपने कदम अंदर बढ़ाने लगा। अंदर जाते हुए उसने खुद से कहा, सब तुमसे मिलकर चले गए तो एक मीटिंग मेरी भी बनती है फैज खान, इसी बहाने तुम्हें भी पता चल गया होगा कि आरव खुराना क्या कर सकता है। फैज की सिक्योरिटी के लिए इजाज़ खान ने काफ़ी सारे आदमियों को छोड़ा हुआ था। उन्होंने आरव को अंदर जाते देखा तो उसे वहीं पर रोक लिया। गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, आप बिना परमिशन के सर से नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स और छवि सिंघानिया को मिलने की इजाज़त है। उसे देखकर आरव ने सख्त आवाज में कहा, हाँ तो तुम किस लिए हो, अंदर जाकर परमिशन लो, जाकर उसे बोलो कि उसका खास दोस्त उससे मिलने आया है, आरव खुराना है नाम मेरा, पता नहीं किन बेवकूफों को काम पर लगा रखा है। गार्ड ने पहले आरफ को अजीब नजरों से देखा और फिर अंदर जाकर फैज को आरफ के बारे में बताया। फैज ने आरफ को अंदर आने के लिए पलके झपकाकर हामी भर दी थी। फैज के परमिशन देने के बाद आरफ अंदर गया। उसने सभी गार्ड्स को बाहर भेज दिया था। अंदर आते ही आरफ ने फैज को बिस्तर पर पड़े हुए देखा तो उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। आरफ ने फैज की तरफ देखकर हल्के लहजे में कहा, सुना है दूसरों की चीज पर बुरी नजर डालने वालों की हालत काफी खराब होती है, आज अपनी आंखों के सामने देख भी लिया। ये कोई लव स्टोरी नहीं है मिस्टर खान, जो तुम इतनी दूर से चलकर मेरी मिसेस खुराना को पाने के लिए आओगे और मैं इतनी आसानी से उसे खो दूंगा। वो मेरी वाइफ है, मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ। इतनी आसानी से उसे तुम जैसों के हाथ तो बिल्कुल नहीं खोने वाला। फैज बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने आरफ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक वहां चुप्पी छाई रही तो आरफ ने बोरियत भरे लहजे में कहा, क्या यार, मजा नहीं आ रहा, तुम तो मेरी बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, आई एम गेटिंग बोर। आरफ ने मुंह बनाया और वहां से चला गया। वहीं फैज उसे जाते हुए देखकर अपने मन में बड़बड़ाकर बोला, जवाब देंगे, अच्छे से जवाब देंगे आपको आरफ खुराना। उस दिन आपकी बोलती बंद हो जाएगी जब आपकी मिसेस खुराना हमारी वाइफ बनेगी। आज हम नहीं बोल पा रहे हैं, उस दिन आपकी बोलती बंद होगी। आज से थोड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे तो प्लीज समीक्षा करने में आलस मत दिखाना, पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।